लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, आज हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते एत एजुलताते की शुरुआत करेंगे। यह संत पापा फ्रांसिस का तीसरा प्रेरितिक प्रबोधन है जो 9 अप्रैल 2018 को प्रकाशित हुआ था। यह हम सबों के लिए वर्तमान विश्व में पवित्रता हेतु एक निमंत्रण है। अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाहते हैं कि हम वर्तमान परिवेश में जहां कहीं भी हैं, अपने में पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ। यीशु ख्रिस्त इस वाक्य को उनके लिए कहते हैं जो उनके नाम के कारण सताए या प्रताड़ित किए जाते हैं। ईश्वर हमसे सभी चीजों की मांग करते और बदले में हमें सच्चा जीवन प्रदान करते हैं, एक सच्ची खुशी जिसके लिए हम सभी बनाए गए हैं। वे चाहते हैं कि हम सभी संत बने और जैसे तैसे जिंदगी अपने एक साधारण जीवन से संतुष्ट ना हो। यदि हम गौर करें तो धर्म ग्रंथ बाइबल के पहले पन्ने से ही पवित्र होने का बुलावा विभिन्न रूपों में अंकित है। हम इसे अब्राहम के लिए ईश्वर के कहे गए वचनों में अभिव्यक्त पाते हैं, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। इसका अर्थ हमारे लिए पवित्रता के संबंध में एक आलेख प्रस्तुत करना नहीं है जिसमें इसकी महत्वपूर्णता को समझने और समझाने हेतु परिभाषाएं और कई अंतर शामिल हों, या यह पवित्रता को प्राप्त करने के विभिन्न उपायों और साधनों की चर्चा करता हो। संत पापा फ्रांसिस एक साधारण रूप में हमारे सामने एक लक्ष्य को पुनः प्रस्तावित करते हैं जो हम सबों के लिए अपने परिवेश में रहते हुए ही इसकी जोखिमों, चुनौतियों और अवसरों के मध्य पवित्रता में बने रहने का एक बुलावा है, क्योंकि ईश्वर ने हम में से प्रत्येक जन को चुना है जिससे हम उनके सम्मुख शुद्ध और पवित्र बने रहें। ईश्वर ने संसार की सृष्टि के पहले हम सबको चुना है जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। श्रोताओं, इब्रानियों के नाम पत्र हमें असंख्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने में उलझाने वाले पापों को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यह हमारे लिए अब्राहम, सारा, मूसा, गिदियोन और दूसरों के बारे में कहता है। यहाँ हम इब्रानियों के नाम पत्र में विश्वास के महत्व के बारे में सुनते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा जिसे हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई। विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वह धर्मी समझे गए क्योंकि ईश्वर ने उनका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वह मरकर भी बोल रहे हैं। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक आरोहित कर लिए गए। वह फिर नहीं दिखाई पड़े क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ इसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपने परिवार के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता के अधिकारी बने जो विश्वास पर आधारित है। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी कि वह कहां जा रहा है, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह इसाहक और याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार और निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी क्योंकि उनका विचार यह था कि उसने प्रतिज्ञा की है, वह सच्चा है और इसलिए एक मरणसन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना वे सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे जो उस तरह की बातें कहते हैं जो यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए थे। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वे चले गए थे क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे। वे तो उस उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे, इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उन्होंने इसाहक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गए थे, यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसाहक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। विश्वास के कारण इसाहक ने याकूब एवं एसाव को भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। विश्वास के कारण याकूब ने यूसुफ के हर एक पुत्र को आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी छड़ी की मूठ के सहारे झुककर ईश्वर की आराधना की। विश्वास के कारण यूसुफ ने मरते समय मिस्र से इसराइलियों को निर्गमन का उल्लेख किया और अपनी हड्डियों के विषय में आदेश दिया। विश्वास के कारण मूसा के माता पिता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उन्होंने जन्म के बाद 3 महीनों तक उसे छुपाए रखा और वे राजा के आदेश से भयभीत नहीं हुए। विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना उचित समझा। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह के अपयश को अधिक मूल्यवान माना क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। विश्वास के कारण उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया। वह राजा के क्रोध से भयभीत हुए बिना दृढ़ बने रहे मानो वह अदृश्य ईश्वर को देख रहे हों। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते इत इसुलताते पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा, सर्वदा सदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं, महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा। सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं। करतार तू ही पालनहार और तू ही राखनहार, करतार तू ही पालनहार और तू ही राखनहार, तूने ही हमको मुक्ति दी, तू ही है तारणहार, सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पर्शियनिस्ट ऑर्डर के सुपीरियर जनरल फादर जोआकिम रेगो को प्रेषित एक पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने आशा व्यक्त की है कि अंतर्राष्ट्रीय ई शास्त्रीय सम्मेलन क्रूज की प्रज्ञा के आलोक में समकालीन चुनौतियों की नवीकृत समझदारी प्रदान करेगा। संत पापा फ्रांसिस ने पर्शियनिस्ट ऑर्डर के सुपीरियर जनरल फादर जोआकिम को बहुलवादी विश्व में क्रूज की प्रज्ञा पर अंतर्राष्ट्रीय ई शास्त्रीय सम्मेलन के अवसर पर एक पत्र लिखा है। सम्मेलन का आयोजन परमधम पीठ लैतरन यूनिवर्सिटी के ग्लोरिया क्रूसिस आसन द्वारा किया गया है, जो यीशु ख्रिस्त के दुखभोग अर्थात पर्शियनिस्ट धर्म समाज की पहल है, जो अपनी स्थापना की तीसरी शताब्दी मना रहा है। अपने पत्र में संत पापा ने कहा है कि सम्मेलन धर्म समाज के संस्थापक संत पॉल के क्रूस के प्रति चाह को व्यक्त करता है, जो पास का रहस्य को ख्रिस्त विश्वास और पर्शियनिस्ट धर्म संघी परिवार के कार्यक्रम का केंद्र बनाना चाहते थे तथा ईश्वरी उदारता का प्रत्युत्तर देते हुए उसकी घोषणा और प्रचार करना तथा दुनिया की आकांक्षाओं एवं आशाओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। संत पापा ने कहा कि क्रूस पर यीशु के चिंतन में हम हर मानवीय आयाम को ईश्वरीय करुणा में देखते हैं। ईश्वर का प्रेम हर एक मानव व्यक्ति के लिए है और हर मानव परिस्थिति तक पहुंचता है। हमारे संबंध को सीधे ईश्वर के साथ और आपस में सभी मानव व्यक्तियों के साथ जोड़ता है। संत पापा ने कहा कि क्रूस हमें दीनता के साथ कारणों को एक साथ लाने के महत्व को दर्शाता है। इस तरह ईश शास्त्र निमंत्रण देता है कि विवाद और एजेंडा से बचने के लिए आत्मविश्वास द्वारा सबसे कमजोर लोगों की वास्तविक परिस्थिति का सामना किया जाए, उस मूल्यवान बीज को खोजते हुए जिसको वचन कंटीली भूमि में और कभी कभी संस्कृति के विरोधाभासी बहुलता में बिखेरता है। संत पापा ने जोर दिया है कि क्रूस हर जगह और हर युग के लोगों की मुक्ति का स्रोत है। अंततः संत पापा ने आशा व्यक्त की है कि ईश शास्त्रीय सम्मेलन क्रूस की प्रज्ञा के आलोक में समकालीन चुनौतियों की नवीकृत समझ प्रदान करेगा, ताकि ईश्वर की योजना के प्रति निष्ठापूर्ण और मानवता के प्रति चौकस सुसमाचार प्रचार को बढ़ावा दिया जा सके। संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाकिया के जेसुइट पुरोहितों से आग्रह किया है कि वे अपने कार्य में ईश्वर और उनकी प्रजा के करीब आएं। स्लोवाकिया की प्रेरित यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने याद दिलाया है कि कलीसिया आत्मपरक और प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए बुलाई गई है। यूरोपीय संघ के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल होलरिक ने याद दिलाया है कि युवा यूरोप के भविष्य हैं, बल्कि वे वर्तमान भी हैं। युवा कैथोलिक यूरोप में अधिक एकजुट एवं भाईचारापूर्ण होने के लिए बुलाए गए हैं। यूरोपीय संघ के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युवा यूरोपीय कैथोलिकों से एकजुटता, भाईचारा और सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित एकता की अपेक्षा की जाती है। दस्तावेज में ठोस नीति प्रस्ताव और सुझाव शामिल हैं, जो यूरोप के भविष्य पर कार्तिक युवा सम्मेलन के दौरान उभरे, जिससे इस साल जून में कॉमेचे द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में करीब 100 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यूरोप के भविष्य की पृष्ठभूमि पर सभा 3, 10 और 17 जून को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। व्यापक सार्वजनिक बहस प्रक्रिया में यूरोपीय नागरिक संस्थाएं और संगठन शामिल थे, ताकि संघ में बदलाव लाया जा सके, जिससे यह आज कोविड-19 संकट के बाद की चुनौतियों का सामना कर सके। प्रक्रिया की शुरुआत 9 मई 2021 को हुई थी। यूरोप को दिए अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कार्तिक युवाओं को 3 बातें बतलाई थी: उचित सामाजिक सुधार, पारिस्थितिक और डिजिटल बदलाव और लोकतंत्र एवं यूरोपीय मूल्य। यूरोपीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा 9 सितंबर को प्रकाशित 13 पृष्ठों के रिपोर्ट में सम्मेलन के मुख्य परिणामों को प्रस्तुत किया गया है, तथा यूरोप के कार्तिक युवाओं की आकांक्षाओं एवं चिंताओं के आलोक में युवाओं के भविष्य एवं संघ के भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। लोकतंत्र और यूरोपीय मूल्यों के संबंध में सम्मेलन के प्रतिभागियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक युवाओं को शामिल करने पर जोर दिया है। उन्होंने नई यूरोपीय पीढ़ी को एकजुटता, बंधुत्व और सम्मान के ख्रिस्ती एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर शिक्षा देने तथा यूरोपीय संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया है। सम्मेलन पर टिप्पणी करते हुए कॉमेचे अध्यक्ष कार्डिनल जीन क्लाउदे होल्ड्रिक येसु समाजी ने प्रतिभागियों पर गहरी आस्था और भरोसा व्यक्त की है कि युवा हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना और समाधान कर पाएंगे। उन्होंने युवाओं से कहा, आप न केवल यूरोप के भविष्य हैं, बल्कि आप यूरोप के वर्तमान भी हैं। आप अपने अनुभव, ज्ञान और आशा से एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, न केवल यूरोप और यूरोपीय लोगों के लिए, बल्कि इस विश्व के सभी भाई बहनों के लिए। वैटिकन सिटी प्रशासन ने एक आज्ञाप्ति जारी कर वैटिकन में कोविड-19 प्रसार को रोकने हेतु लिए गए उपायों की जानकारी दी। 1 अक्टूबर से वैटिकन सिटी में प्रवेश की अनुमति उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास वैटिकन से प्राप्त ग्रीन पास हो, यूरोपीय ग्रीन पास हो अथवा एक विदेशी कोविड-19 ग्रीन पास हो जो वैक्सीन लेने की पुष्टि करता हो। नए निर्देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से संबंधित वैटिकन सिटी राज्य के परमधम पीठी आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय से एक आज्ञाप्ति के रूप में जारी किया गया है, जो 7 सितंबर को आम दर्शन समारोह के दौरान पोप फ्रांसिस द्वारा किए गए अनुरोध के जवाब में जारी किया गया है। संत पापा ने कर्मचारी समुदाय के स्वास्थ्य एवं कुशलता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए हरेक की प्रतिष्ठा, उनके अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही थी, तथा प्रशासन से स्वास्थ्य आपातकाल को रोकने, नियंत्रित करने और उसका प्रतिकार करने के लिए हर उपयुक्त उपाय अपनाने का अनुरोध किया था। खाद्य प्रणाली पर इस सप्ताह के अंत में न्यूयॉर्क में होने वाले यूएन सम्मेलन के पूर्व कारिता स्विट्जरलैंड ने आह्वान किया है कि हमारा भोजन अधिक जलवायु अनुकूल हो। खाद्य प्रणाली पर 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन के पूर्व सोमवार को कारिता स्विट्जरलैंड ने एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि विश्व में 800 मिलियन से अधिक लोग भुखमरी से पीड़ित हैं और यह आंकड़ा जलवायु परिवर्तन एवं कोरोना वायरस संकट के कारण जल्द ही बढ़कर बिलियन पहुंच सकता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।